आपकी याद बाबा रह रह के आए,
आपकी याद बाबा रह रह के आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय,
देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सब आराम से बैठ गए। बाबा इस धरती पर आकर ब्रह्मा मुख से रोज कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, कलप में एक ही दफा इस धरती पर मैं आता हूं तो थोड़े समय के लिए आता हूं और 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए आता हूं और बहुत जन्मों के द कर्मों का बोझ है, थोड़े समय के अंदर उसको मिटाने की विधि बताने के लिए आता हूं। तब बाबा ने कहा बच्चे सारे दिन में चलते फिरते खाते पीते निरंतर श्वासोश्वास बाबा को याद करो, तो आपके मन में विचार आएगा कि निरंतर कैसे हो सकता है, सवेरे अमृत वेले खाली है, सवेरे उठकर बाबा को याद कर सकते हैं, शाम को सारा दिन कर्म हो गया, शाम को सभी से जब निवृत्त हो गए शाम को आधा घंटा बैठ के ध्यान कर सकते हैं, तो ऐसे हम समझते हैं। लेकिन बाबा समझता है कि बच्चे सारे कल्प में ऐसा एक जो विधि है, ऐसा एक समय है, इसको कहते हैं कौन सा है, संगम युग है। कौन सा संगम युग है? पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। तो मनुष्य आत्मा पुरुषोत्तम बन सकता है थोड़े समय के अंदर, तो ये कैसे हो सकता है? सब कुछ करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी, सब कुछ कर्म करते हुए भी तो बाबा को निरंतर याद कर सकते हैं, और बहुत जन्मों के जो विकर्मों का बोझ है, बहुत जन्मों का जो आत्माओं को प्यास है कि शांति चाहिए, सुख चाहिए, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है, भारत को खास और सारे विश्व को शांति और सुख से संपन्न बनाना है, है ना। सारे विश्व को शांति चाहिए और सुख संपत्तियों से संपन्न बनाना है, ये लक्ष्य है। तो उसके लिए अपने आप तो नहीं होगा, है कुछ करना पड़ेगा। सबसे सहज तरीका है अमृत वेले उठते ही सवेरे से रात तक एक दिन आप चेकिंग करके देख लो, क्योंकि अभी आप और हम सभी इधर क्यों आए हैं? आज बाबा ने कहा किसके लिए आए हो, कौन है हम? खुदाई खिजमतगार, कहा भगवान को मदद करने आए, भगवान की सेवा करने आए। तो कौन कर सकता है, सभी कर सकता है? नहीं, जो स्वयं अपने आप की पहले सेवा करता है तब का स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। पहले स्वयं को सजाओ, स्वयं को सशक्त बनाओ, स्वयं को शांति से शक्ति से संपन्न बनाओ, तब हम औरों की जो भी सेवा करते हैं तो उस सेवा से और भी ऐसी प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर स्वयं के पास ही कुछ नहीं है तो औरों को क्या दान करेंगे? हमारे बोल, हमारे चलन, हमारे कर्मों से क्या मिलेगा औरों को? जैसे आज बाबा ने कहा बच्चे हमारे बोल कैसे होना चाहिए, कल भी कहा परसों भी कहा बच्चे मुख्य मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलना चाहिए, क्या निकलना चाहिए? फूल निकलने चाहिए, क्योंकि फूल समान बनने जा रहे हम। आज भी बाबा ने कहा दैवी गुण चाहिए, अगर दैवी गुण है तो हमारे बोल, हमारे आचरण, कोई भी सेवा करते हो आप, किसी प्रकार की सेवा करो, वो सेवा स्वयं को भी सुख देता है और औरों को भी सुख देता है। तो ये कैसे होगा? तो आज आपका सेवा का टर्न शुरू है, शिव बाबा की यज्ञ की सेवा करने आए हो। नहीं तो दुनिया में सेवा करने बहुत करने वाले बहुत है, लेकिन ये जो ईश्वरीय सेवा है ये सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, बाबा गारंटी देता है कम से कम 21 जन्मों के लिए। आज दुनिया में भी कोई भी कुछ काम करेगा तो एक जन्म, अगर कोई इलेक्शन में भी रहेगा तो 5 साल के लिए बनेगा, लेकिन ये जो सेवा करते हो आप 21 जन्मों की गारंटी देता है। लेकिन उसकी विधि चाहिए, ऐसे नहीं। विधि देख लो आप, संसार में एक विधि है इस सृष्टि पर, खेती में एक बीज बोलो 50-100 दाना लगते हैं, लेकिन बीज बोने की विधि है। ऐसे सूखी जमीन पर ऐसे बीज बोलो क्या उगेगा? हां, धरती भी अच्छी चाहिए, पानी भी चाहिए, सूर्य की किरणें भी मिलनी चाहिए। ऐसे जगह पर विधि पूर्वक अगर बीज बोते हो ये धरती भी पूरा फल देती है। तो यहां भी है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी शिव बाबा भी आकर ऐसी विधि बताता है, बच्चे सारे कल्प के लिए सुख संपन्न जीवन व्यतीत कर सकते हो, प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन उसके विधि सबसे पहले अमृत वेले शुरू, सवेरे उठते ही आत्मा को चार्ज करो, अपने को सशक्त बनाओ। तो कैसे होगा ये? तो उसकी विधि चाहिए। जब भी आप अमृत वेले आके बैठते हो तो अगर खाली बैठो तो मन तो चलेगा, मन खाली नहीं रहता है, मन के अंदर इधर उधर के विचार आएंगे। हां, मन के अंदर आप विचार अच्छे करेंगे, लेकिन हमारे पास और एक चीज है, बुद्धि है, स्मृति है। अगर बुद्धि को यूज नहीं किया, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा वो बार बार याद आता है, तो क्या करें? तो विधि चाहिए। तो भारत में देख लो, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं, 2 हाथ से नमस्ते करते हैं, और 2 हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते हैं। विधि है, छोटी अंगुली को लगनी चाहिए, विधि पूर्वक अंगुली से अंगुली जोड़ते हो तो उसका नाम है नमस्ते। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं ज्ञान का सागर, भाग्य विधाता, वो आकर के ऐसे एक विधि बताता है, बच्चे आपके पास 2 हाथ है, आत्मा के पास 2 हाथ है, एक है मन और एक है बुद्धि। ये मन और बुद्धि को एक करो और मेरे से जोड़ते हो तो मेरी शक्ति को आप ग्रहण कर सकते हो। वो शक्ति आत्मा के अंदर जो पाप है उसको साफ करती है, क्योंकि शिव बाबा को कहा वो कौन? पतित आत्मा को पावन करता है। डॉक्टर कौन? जो शरीर की बीमारी ठीक करने वाले का नाम है फिजिशियन, डॉक्टर। अगर देखो आपको लाइट जलनी चाहिए तो 2 तार जोड़ेंगे तो करंट आता है, लाइट जलती है। तो आत्मा को भी अगर शक्ति चाहिए तो 2 तार जोड़ना पड़ेगा। उसकी विधि है, सवेरे बैठते ही आराम से बैठो जैसे आपको चाहिए, जैसे शरीर को आराम लगता है आराम से बैठो। बैठ करके ये दोनों फैन चलना चाहिए। तब कहा योगी की तन और मन दोनों शीतल होते हैं, तन भी शीतल मन भी शीतल, वो अपने आप नहीं, 2 फैन चलना चाहिए। तो योग में बैठते ही अपने आप से पहले बात करो, उसको कहते अपने को जागृत करो। नहीं तो हम हर सेकंड, मैं माना शरीर, शरीर की याद रहती है, कम से कम यहां आके बैठते ही अपने को जागृत करो, मैं कौन? हां, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, हां मैं आत्मा हूं। और एक दिन मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। और एक दिन ले लो, मैं कौन? मैं ब्राह्मण कुल भूषण ब्राह्मण हूं। एक एक दिन एक एक ले लो, अपने आप को जागरूक, मैं कौन सी आत्मा हूं? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। दूसरा, अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा रूप कैसा है? तुरंत बुद्धि जवाब देती है, बुद्धि को यूज करो। यही सारे विश्व के अंदर जो लोग योग करते हैं, और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में योग की विधि सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सुनाता है, नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग क्या है? भगवान आके कौन सा यह राजयोग पढ़ाता है? तो उसके अंदर कुछ विधि है, विशेष विधि है, तो ऊपर परमधाम से आके पढ़ाता आकर के। तो वो विधि है, बैठते ही अपने आप से बात करो, अपने आप को जागृत करो, मैं कौन। हां, तुरंत किसको पूछा? मन और बुद्धि। अपने आप से बात करने के लिए मन पूछता है, बुद्धि जवाब देती है। जो हमने इतने समय से ज्ञान सुना, उस ज्ञान का उपयोग करना ही योग है। निल होके बैठना, खाली बैठे रहना, ये शांति नहीं। इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहते हैं स्वीट साइलेंस। दैट साइलेंस नहीं, निल होके बैठना नहीं, स्वीट अच्छे विचार मन और बुद्धि में चलना चाहिए। तो बैठते मन पूछता है, मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। फिर मेरा रूप, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, मेरा रूप है। तीसरा पूछो, मेरे गुण कौन से हैं? मेरे सात दैवी गुण है, आसुरी गुण और दैवी गुण है, सुना है, उसका उपयोग करो। पूछ लो अपने आप से, मेरे एक एक गुणों को धीरे 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 जागृत करो, मैं कौन सी आत्मा हूं। जब परम धाम से आया था कितना पवित्र था, अब मुझे ऐसे बन करके फिर अपने घर वापस जाना है। थोड़ी भी अपवित्रता रही तो जा नहीं सकेंगे, जहां जाना है वहां तैयारी करते हैं। तो अपने को जागृत करो, एक एक गुण पूछते जाओ। चौथा, मेरे कर्म, मैं आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में बैठकर इन आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं, लेकिन अभी किस कर्म करने के लिए बैठे हो? शिव बाबा को याद करने के लिए बैठे हो। तो ये शरीर का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई आया इधर देखा, कोई गया इधर देखा, हाथ हिल रहे, पांव हिल रहे, हां हम इस कार को चलाते जरूर, लेकिन अभी नहीं चलाना चाहिए, अभी शरीर का काम नहीं है। तब बाबा ने बहुत दफा कहा, बच्चे अशरीरी बनो, विदेही बनो, देही अभिमानी बनो। तो कैसे बने? ये विधि है कि शरीर का उपयोग नहीं लो। योग में बैठते ही 15 मिनट आधा घंटा बाबा को याद करने बैठे, इस शरीर का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई आया तुरंत, आदत बनी हुई है, इस आदत को चेंज करना है। आके हिलना नहीं, हाथ हिलना नहीं, पांव का कोई काम नहीं है, ये शरीर अलग और मैं अलग हूं। आप देखना रोज के मुरली में ये शब्द, एक शब्द जरूर रहता है, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। पहले आत्मा समझना पड़ता है, तो समझने के लिए ये 5 प्रश्न रोज पूछना है। जब भी आप ऊपर चढ़ना चाहते हो स्टेज पर, ऊपर वाले मंजिल में जाना चाहते हो, धरती से ऊपर जाना चाहते हो, याद रखना ये 5 स्टेप्स चढ़ना ही है। कि मैं कौन, इसको शॉर्ट में बता दे तो एक एक प्रश्न है ये, मैं कौन, मैं आत्मा हूं, क्या आत्मा है, पूछ लो अपने आप से, चिंतन चलना चाहिए। हां मैं आत्मा चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु हूं, मेरे पास क्या है, मन है। ये मन क्या करता है? मेरे पास कौन सी शक्ति है, बुद्धि है। बुद्धि क्या करती है? मेरे अंदर संस्कार कौन से है, कौन से संस्कार लेके आया था मैं, अब कौन से संस्कार है, ये संस्कार कैसे मिटाना चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये सारा योग में बैठकर शांति से अपने मन और बुद्धि को चलाओ। जब ये दोनों चलते हैं, जो हमारे आज कंप शिकायत है, फरियाद है बाबा से, योग बाबा लगता नहीं है, योग अपने आप नहीं लगता है, योग में विघ्न आते हैं, योग में व्यर्थ विचार चलते हैं। कहां से चलते हैं? एक शरीर में दो आत्मा तो नहीं है, एक ही है। एक तो बाबा को याद कर रहा है, और एक जो बुद्धि खाली है वो याद दिलाती है, अरे मुझे इसको मिलना था, ये फोन करना था, कल उसने ऐसे किया। तब कहा योग में वियोग, ये कौन डालता है? दूसरे कोई नहीं, माया नहीं, विघन नहीं, व्यर्थ नहीं, ये अपनी बुद्धि ही, खाली बुद्धि शैतान का काम करती है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं निराकार शुभ बाबा ने आकर विधि बताया है, बेटे आराम से बैठो, अभी आपके पास दो तीन पांच दिन है, आज से अभ्यास करो, अपने आप को अभ्यास करो। क्यों आते हम? पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है। आप पढ़ेंगे सुनेंगे भी नहीं, उसके बाद उसका अपने आप को पढ़ाओ, क्या पढ़ा वो पढ़ाओ, समझ में आना चाहिए तो आचरण में आता है। तो पहली विधि बैठते ही अपने आप को जागृत करो, एक मैं कौन, फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण, फिर मेरे कर्म, और पांचवा मैं कहां से आया, ऊपर से आया। तो ये पांच प्रश्नों का चिंतन करते हो, मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है, इन पांच दस मिनट के अंदर आपके अंदर दूसरे कोई विचार आए? कोई रास्ता ही नहीं, मन भी बिजी, बुद्धि भी बिजी, तो दूसरे विचार कहां से आते आए? कोई नहीं आएगा। इतना दिन हम क्या करते थे, मन चलता है, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, अरे आज उसको फोन करना था। बुद्धि खाली, स्मृति, बुद्धि बीच में विघन डालती है। तो ये एक अच्छी तरह से जानना चाहिए। इस विधि से अगर आप सवेरे बैठकर सूक्ष्म तन में जाओ, ब्रह्मा बाबा है, बाप दादा है, बाप दादा से बात करो, हमारे जीवन में कोई भी दुख है, समस्या है, कोई भी बात है, तो बाबा से लेन देन करो, उसको कहते हैं रूरियान। स्मृति है, बाप दादा कहां है? ऊपर है, देख रहे हो, यहां आंखें स्थूल आंखों से यहां देख रहे हो, लेकिन ये आत्मा कहां है? यहां नहीं पता है, ऊपर है। जैसे आप किसी से बात करते हो, यहां से अमेरिका में कोई है तो आप उसको देख सकते हो? नहीं, साइंस ने हमको साधन दिया, मोबाइल दिया, मोबाइल पर नंबर इधर डायल करो, आपका आवाज वहां जाता है, लेकिन वो सो रहा है, खा रहा है, क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है, लेकिन आपका आवाज जाता है वहां। तो ऐसे ही यहां बैठे हुए भी अगर भगवान से आप बात करना चाहते हो, उसका भी नंबर याद रखना चाहिए। अगर गलत नंबर आपने किया, आवाज ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा इधर उधर जाएगा, इधर उधर क्या, चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस है, वो आपके अंदर घुसेंगे, आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो इधर के वाइब्रेशंस, इधर का जो वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तब बाबा कहता है इस वातावरण से ऊपर आओ। तो ऊपर सूक्ष्म तन में बाबा से बात करो, बाबा आपने कल मुरली में ये कहा, ये कैसे करो? बाबा मुझे ये दर्द है, ये बीमारी है, ये दुख है, सब यहां रूरियान करो। ये जब करते हो इस स्थिति को, ये कब करना है? पहले अगर बैठकर आप रूरियान करते हो तो आपका आवाज ऊपर नहीं जाएगा, ये अच्छी तरह से याद रखना। शरीर की स्मृति में रहकर जो संकल्प करते हो वो भारी है, वो ऊपर जाते नहीं है। तो लाइट बनो, लाइट आत्मा। तो आत्मा बनने के लिए पांच प्रश्नों का पहले चिंतन चाहिए। तो आत्म अभिमानी बने, आत्मा के वाइब्रेशंस हल्का है, अपने आप ऊपर जाता है। तो सूक्ष्म तन में रूरियान करो, उसके बाद परम धाम जाओ। शुभ बाबा कौन? बाबा ने कहा बच्चे बाप समान बनो, बाबा से मांगो नहीं, बाबा मुझे ये दे दो, ये दे दो, नहीं। बाबा ने कहा बच्चे बाप क्या करता है वो बच्चों को करना चाहिए। सन शोस फादर, कोई कहता है ना ये तो इसके मां बाप जैसे ही है। तो हमको देखते हमारी चलन, कल से आप सेवा करेंगे तो आपको देखते ही लगना चाहिए ये शुभ बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। इनकी बोल, इनकी चलन, इनके आचरण देख करके औरों ये सेवा है। ये कब होंगी? तब पहले बाबा से शक्ति भरो। तो सवेरे अभी शाम को बैठेंगे, बैठते ही शुभ बाबा कौन, बाबा की आठ शक्तियां हैं मुख्य, एक एक शक्ति ले लो। हमारा बाप कौन है? वो पवित्रता का सागर। बाबा मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपके साथ परमधाम में था, आपने मुझे यहां भेजा, अब मुझे आपके पास आना है, मुझे आपके जैसे बनना है, तो आपके जैसे कैसे बनूं? आप पवित्रता के सागर हो, मुझे आपके जैसे बनना है। फिर पूछो, बाबा आप शांति के सागर हो, आप कभी भी गुस्सा नहीं करते हो, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आज के बाद चाहे कुछ भी हो मैं गुस्सा नहीं करूंगा। फिर बाबा आप कौन हो? दुख हरता सुख करता हो, जैसे बाप वैसे मैं बच्चा, आज के बाद मैं कभी भी किसी को दुख नहीं दूंगा, क्यों? मैं आपका बच्चा हूं, मैं सुखदाता का बच्चा हूं। बाबा आप जो ज्ञान सुनाते हो, मैं औरों को ज्ञान सुनाऊंगा आपके जैसे, क्योंकि आप ज्ञान का सागर हो। बाप क्या करता है और मैं क्या करता हूं, तो ऐसे बाबा से बात करते हो तो उसका संग का रंग लगता है। उसके साथ बात करते करते मन और बुद्धि वहां जुड़ गई। जैसे दिन में आप देख लो, यहां अंदर बैठते हो, बाहर सूर्य आया हुआ रहता है, तो सूर्य की किरणें आपको मिलती है, मिलते हैं? अंदर बैठे हो, सूर्य बाहर आया हुआ है, सूर्य की किरणें आपको मिलेंगी? नहीं। अगर आपको सूर्य की किरणें चाहिए, इस शरीर को बाहर ले जाना पड़ेगा। सूर्य आया हुआ है, सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ी, 5-10 मिनट के अंदर देखो पसीना निकालता है। तो ऐसे हम कहते हैं सारी दुनिया को, भगवान आया है। कहां आया वो, किसके लिए आया वो? पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए आया है। लेकिन आत्मा मकान के अंदर है, उसको बाहर लाओ, उसको जागृत करो। जैसे आप जागृत करते हो तो सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती है, आत्मा को मिलती है। तो इस प्रकार, इस विधि से अगर रोज 5-10-15 मिनट आधा घंटा करते हो, इसको बाबा ने कहा बीज के साथ कनेक्शन जोड़ो। अग्नि है, उसके साथ कनेक्शन जोड़ो, बीज रूप स्थिति, ज्वाला स्वरूप अग्नि है वो, तो वो शक्ति हमारे पाप को मिटाता है। आप देखना, अगर रोज 1 महीना रोज अगर ऐसा करते हो तो बार बार जो बुरे स्वप्न आते हैं धीरे 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 मिटते जाएंगे। तब विश्वास होता है। अभी अमृत वेले उठने की इच्छा ही नहीं होती, नींद आती है, योग नहीं लगता है, क्यों? कि प्राप्ति नहीं है। जहां प्राप्ति है वहां उन्नति है। अपने आप उमंग उत्साह आता, अरे सवेरे उठना चाहिए, ये संस्कार मिटाना चाहिए। तो क्या होता है, प्राप्ति हो रही है, तो विधि पूर्वक सबसे पहले सवेरे ये करना चाहिए। दूसरा, उसके बाद मुरली है, ज्ञान भी चाहिए, तो ज्ञान को भी विधि पूर्वक अभ्यास करते हो। सारी मुरली सुनते बैठो, सुनते सुनते एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगा। हर मुरली में 4 विषय होते हैं, ज्ञान भी है, योग कैसे करना चाहिए, श्रीमत क्या है, धारणा क्या है, सेवा कैसे करनी चाहिए। कोई भी एक मुरली के पॉइंट ले लो भाई, लिखकर अपने जेब में रखना, ये ज्ञान धन है। डायरी में लिख दिया, डायरी कमरे में रख दिया, और आप सेवा करते हो, कोई पूछेगा बाबा ने क्या कहा था? बहुत अच्छा कहा था। क्या था वो बताओ? क्यों? हमारी बुद्धि इतनी तमो प्रधान बन गई है, तो क्या करे, उसको ठीक करने के लिए ये विधि चाहिए। याद नहीं रहता है, छोड़ना नहीं, अपने को परिवर्तन करना है, तो विधि चाहिए। एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगा लिखकर अपने जेब में रख दो। माताएं लिखकर अपने पास एक कागज में, डायरी में रखो। और देख लो, यहां से गए आप, नाश्ता करने बैठते हो, भगवान ने हर एक को 2 हाथ दिया है, एक हाथ अपने शरीर को खिलाओ, एक हाथ और एक खाली है जेब में डालो। पूछो, अपने आप को पढ़ाओ, बाबा ने क्या कहा था? ये अन्न है, ये भोजन है, शुद्ध विचार बाबा देता है, तो आत्मा को खिलाओ, ये शरीर को खिलाओ। तब कहा शरीर भी स्वस्थ चाहिए, आत्मा भी स्वस्थ चाहिए, दोनों चाहिए। हम एक को खिलाते हैं, आत्मा कमजोर है, इसलिए किसी ने कुछ बोला तुरंत गलत शब्द निकलता है। क्यों? आत्मा कमजोर है। शक्ति शरीर को 3 दफा खाना खिलाते हो, आत्मा को, तब आप जानते हो, चाहते नहीं कोई भी गुस्सा करना, किसी ने थोड़ा सा इच्छा के विरुद्ध कर्म किया, तुरंत क्या निकलता है? फूल निकलता है, पूछ लो आप। तो ज्ञान नहीं जानते हो? जानते हो, 7 दिन का कोर्स किया है। तो भी शक्ति चाहिए। तब कहा एक मुरली के पॉइंट, ज्ञान सुनने की पढ़ने की विधि चाहिए। एक ही पॉइंट ले लो बस, भगवान के एक बूंद के प्यासे हैं। 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके जीवन में आएंगे। बहुत पढ़ने से, बहुत खाने से मोटा नहीं बनता। ईट लेस, थोड़ा खाओ, हजम करो। तो एक मुरली के पॉइंट ले लो, 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ कम से कम। एक सवेरे नाश्ता करते समय, उसके बाद दिन में खाना खाते हो, खाना आते ही मुरली क्या थी याद ही नहीं है, जेब में है, निकाल के पढ़ो। एक ही पॉइंट याद दिलाओ बस। रात को पेट एक ही है, 3 दफा खाना खिलाते हो, आत्मा को भी भूख लगती है। शाम आते ही खाना शाम को आया, रात को मुरली याद करने की जरूरत नहीं, जेब में है, निकालो पढ़ो। कम से कम 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ। तो किसके है? बाबा ने मुझे ये कहा। देखो बाबा की याद आई। अभी और भी फास्ट जा सकते, तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। सारे दिन में कोई मिला, हां बाबा का बच्चा, ओम शांति किया, इतना नहीं छोड़ना, नहीं एक हीरे का दान दे दो। आज बाबा ने ये बहुत अच्छे पॉइंट सुनाया था। एक कितने व्यक्ति को, बाबा ने कहा एक व्यक्ति को आज मुरली के पॉइंट सुनाते हो आप एक जन्म के लिए धनवान बनते हो। ये ज्ञान धन है, ये अविनाशी है, विनाश होने वाला नहीं। अगर किसी को बुलाकर 1 लाख रुपया दे दो, खाया पिया खत्म, अगले जन्म में देगा नहीं। एक मुरली के पॉइंट सुनाते हो, ये आत्मा को सुनाया आपने, ये अविनाशी है। तो कितने जन्मों के लिए धनवान बनना चाहते हो आपके हाथ में है। तो एक मुरली के पॉइंट सारा दिन में किसी, कोई भी मिला, भाई मिला अपना, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कह दी, बाबा भी याद आया, बाबा के श्रीमत भी याद आया, मन भी स्वच्छ, बाबा का श्रीमत है निरंतर याद करो वो भी याद आया, औरों की भी सेवा भी किया। कितने जितने चाहिए। अगर कोई अज्ञानी भी मिल गया, ज्ञानी नहीं अज्ञानी है, तो भी उसको सुनाते हैं हम, आज न्यूज़पेपर में ये आया था, आज रेडियो में टीवी में ये सुनाया। तो आप अज्ञानी भी मिले तो भी उसको भी क्या कहो कि आज बाबा ने कहना, शिव बाबा ने कहना, मैंने किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, बताओ। हां देखो, गुस्सा करने से ऐसे होता है, सामने वाला दुख देता है, गलत बोलता है, मुझे क्या करना चाहिए? तो वही बाबा की बात किसी न किसी प्रकार के औरों तक पहुंचाने, शुभ समाचार सुनाओ। तो सारा दिन ज्ञान जो सुना सिर्फ रखने के लिए नहीं, सुन करके यहां छोड़ के जाने के लिए नहीं, ये हमने आधा कल्प किया। रामायण सुना, महाभारत देखा, सब कुछ देखा सुना, और वहां ही छोड़ के चले गए, लेके नहीं गए। तो यहां ऐसा नहीं करना है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं निराकार शुभ बाबा सारे कल्प में एक ही दफा आके पढ़ाता है। तब कहते पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। अगर ये नहीं किया तो क्या बनेंगे? फिर ऐसे नहीं कहना हमारा तकदीर ऐसे क्यों, हम गरीब क्यों, हम बीमार क्यों, किसको पूछते हो? अपने तकदीर को पूछना है कि जब भाग्य विधाता आकर उसने विधि बताई थी, उस विधि पूर्वक मैंने अभ्यास नहीं किया। जब बरसात का समय आया, खेती में बीज बोना चाहिए, नहीं आज घर में शादी थी, मैं बीमार था, खेती बोया नहीं, किसको बोलेंगे आप? अनाज कहां से आएगा? अब शिव बाबा ऊपर से भेजेगा नहीं, विधि बताया, बरसात का समय आया, खेती बोलो, 1 साल के लिए अनाज उगा सकते हो, और खेती 1 का 50-100 गुना देता है। तो भगवान भी आता है, सीजन है, इस सीजन पर सारे कल्प में जो आपको चाहिए, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, अपने आप नहीं मिलेगा। ये नंबरवार क्यों बने? एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, किस क्यों किया? आज बाबा ने पूछा कि भगवान ने ऐसी सुख दुख की सृष्टि क्यों रची, ऐसी रची नहीं थी, भगवान ने जो सृष्टि रची वो ऐसी रची थी। और फिर से रचने के लिए फिर से विधि बताता है, बच्चे सारा दिन में एक मुरली के पॉइंट हमारे बुद्धि में रह जाए, कोई भी मिला अगर सवेरे देखना आप, कभी भी कल से करके देखना, प्रयोग अपने ऊपर करो, मुरली सुनो लिखना नहीं, और बाहर जाते ही किसी एक भाई से पूछो, भाई जी आज बाबा ने क्या कहा, बहुत अच्छा क्या था बताओ, देखना क्या बोलता है। और एक दिन देखना, दूसरा दिन कोई भाई सुनता भी है लिखता भी है, फिर उसको बाहर गेट के बाहर जाते ही पूछना, भाई जी आपने क्या लिखा, वो डायरी खोल के देखेगा। तीसरा और एक दिन देखना, सुनो भी लिखो भी और मुख से वर्णन करो, किसी को सुनाओ, और उसके बाद आज सारा दिन बिजी रहे, शाम को अगर आपको किसी ने मुरली के पॉइंट पूछा तुरंत निकलेगा, क्योंकि संस्कार बनाया आपने। तब बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ, व्यर्थ की इधर उधर ही बातों की बार बार देखो, वृत्ति कहा बुद्धि के अंदर, आपको ट्रेन में आते समय किसी ने कुछ गलत शब्द बोला, कुछ देखा आपने, देखो यहां योग में बैठते हो, मुरली क्लास में बैठते हो, सारा दिन में देखना बुद्धि के अंदर वही स्मृति बार बार चलती है, ये वृत्ति है, जो अंदर बुद्धि ने रिकॉर्ड किया वो चलता है, उससे वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से जाते हैं, तब का वृत्ति से वातावरण बनता है, प्रवृत्ति बनती है। तो वृत्ति के अंदर है स्मृति, खाली है, यहां बैठते ही आएगा। तो बुद्धि को कैसे स्वच्छ करे, हां गलत चीज देखी क्या करे, तो उसकी विधि है, कर्म करते समय कपड़े पर दाग लगता है नहीं, ऐसे नहीं, तुरंत उसको साफ करो, नहीं कल करेंगे पक्का हो जाएगा, फिर मिटाना मुश्किल, फिर घिसना पड़ेगा। तो विधि चाहिए, तो ये विधि एक मुरली के पॉइंट ले लो, अपने आप को पढ़ाओ, पहले सुनो लिखो फिर मुख से वर्णन करना चाहिए। कोई ना कोई मिला दरवाजे से बाहर जाते ही बोलो जरूर, लेकिन इधर उधर की बातें नहीं करो, भाई जी आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। और रोज नई नई पॉइंट ले लो, आज नया बाबा ने क्या सुनाया, तब देखना मुरली सुनते समय आपका पूरा ध्यान मुरली पर रहता है। नहीं तो यही है, बाबा तो वही बात सुनाता है, आत्मा समझो बाबा को याद करो एक ही है। उस मुरली के अंदर रोज देखना, जो आपने सारे संसार में जितनी किताबें हैं लाइब्रेरीज है कहीं भी नहीं सुनाया, ऐसी बात आपको रोज एक एक पॉइंट मिलेगा, क्योंकि भगवान पढ़ाता है। तो इसलिए आपका ध्यान आज नया पॉइंट्स मुझे नोट करना है और नए पॉइंट किसी को सुनाना है। कोई पूछेगा आपको, अरे ये भाई तो रोज नए नए पॉइंट सुनाता है, मैंने भी मुरली सुनी मेरा ध्यान ही नहीं गया, तो एकाग्रता ने, तब कहते हैं ध्यान देके पढ़ो। सुनना पढ़ना इतना ही नहीं है, तो रुचि क्यों नहीं आज हमारी पढ़ाई के अंदर, अटेंशन क्यों नहीं। जैसे स्कूल में देखो जो नंबर वन आता है तो वो एक सेकंड भी इधर उधर नहीं देखता है, क्यों, उसका लक्ष्य है। हमारा भी लक्ष्य है, सिर्फ एक प्रजा बनने के लिए हम इधर नहीं आए, हमको बाबा कहता है राजाओं का राजा बनना है, लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य के अनुसार लक्षण भी होता है। तो ये लक्षण के अंदर याद करो, जब भी मुरली क्लास में बैठते हो हमारा कोई किसी से काम नहीं है, दरवाजे से अंदर घुसते ही संकल्प करो कि मुझे कोई काम नहीं है, कुछ भी है बाद में 8 बजे के बाद, उसके बीच में फोन सब कुछ, फोन का समय नहीं है, फोन करने का समय है, खाना इधर बैठ के खाना खाते रहो ना, अच्छा है बहुत अच्छा चलेगा, नहीं खाने का स्थान अलग है, स्नान करने का स्थान अलग है, पढ़ने का स्थान अलग है, फोन नहीं करो इसे, नहीं यहां नहीं, बाहर गए फोन करो, समय है आपके पास। लेकिन दरवाजे के अंदर घुसते ही चप्पल पहन के बैठेंगे, नहीं चप्पल बाहर छोड़ते हो, वहां अंदर घुसते समय फोन वहां ही बंद कर दो। ये जैसे वस्तु कोई भी साइंस के साधन है, हमको बहुत अच्छे अच्छे चप्पल दिया है, बूट दिया है, वो पहन के बैठो ना, नहीं, बाहर छोड़ते हैं दरवाजे पर। तो ऐसे आपका 10 लाख रुपए का मोबाइल है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन समय पर उसका यूज करो। भगवान ने मुंह दिया है, समय पर बोलना है। आंखें दी है, आंखों से क्या देखना है वो भी बताया है ना। ये शरीर दिया है, ये शरीर को यूज कहां कैसे, तब कहा कर्मों की गति अति गुह्य है। कर्म करना जरूर है, विधि बताया। तो सवेरे उठते एक, उसके बाद मुरली, उसके बाद तीसरा भी है। सारे दिन में अभी आप इतने सभी बाबा के बच्चे सेवा करने आए हो, सेवा करते मुख का कोई काम नहीं है, हाथ काम कर रहा है। हाथ से काम करते करते अगर आप अपना भाग्य बनाने के लिए आए हो, भगवान के घर में क्यों सेवा कर रहे हो? अभी माता है घर में भी सब्जी काटते हो, रोटी बनाते हो, अनाज साफ करते हो, यहां भी आप कल से अनाज साफ करेंगे, रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, दोनों में अंतर क्या है? भाई भी कोई सेवा करेंगे, नौकरी भी करते हो, खेती में काम भी करते हो, यहां भी आके करते हो, अंतर क्या है? वहां एक माताजी खाना बनाती है, 2-3 लोगों के लिए बनाएंगी, यहां 10,000-20,000 स्वयं भगवान को भोग लगने वाला है। तो खाना बनाते, सब्जी काटते, मन में ज्ञान का चिंतन चले। शिव बाबा ने क्या सुनाया था? बाबा को भोग लगने वाला है, सफाई से काम करना चाहिए। अगर शिव बाबा को याद करते, बात करते करते कर्म करते हो तो एक का पदम गुना भाग्य जमा कर रहे हो। अगर ये नहीं करते हो, सब्जी काटते करते अरे बच्चों ने खाना खाया कि नहीं, घर में पति ने ऐसा किया कि नहीं, अगर संसार को याद करते कर्म कर रहे हो तो विकर्म बना रहे हो। दोनों चीज है, आप अपना भाग्य भी बना सकते हो और विकर्म भी बना सकते हो। व्यर्थ विचार करते हुए कोई भी कर्म करते हो तो क्या होगा? भाग्य बनेगा? भगवान आता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। बच्चे अपना भाग्य बनाने के लिए आए हो यहां, एक एक सेकंड पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो, लेकिन एक एक सेकंड मुरली सुनने के बाद आराम से सब्जी काट रहे हो, अनाज साफ कर रहे हो, खाना बना रहे हो, आवाज मुख का कोई काम नहीं। डाइनिंग टेबल पर जब खाना आपके सामने आता है तो खाना खाने के लिए मुंह खोलना है कि आपस में दोस्ती करने के लिए, इधर उधर की बात करने के लिए इधर आए हो? पूछ लो हम इधर क्यों आए हैं, ये कौन सा स्थान है? तो आने के बाद विधि पूर्वक जो मुरली सुनी, हां किसी से मिलो, ऐसे नहीं कि एकदम मौन, कोई मिला मुख से क्या निकलना चाहिए? मधुर बोल, एक एक रतन निकलना चाहिए, जितना जरूरी है। एक ही मुरली के पॉइंट सुनाया, अगर कर्म करते हो किसी प्रकार की सेवा करो, करते हुए पूछ लो अपने पर मेल किसकी सेवा कर रहा हूं। नौकरी करते हो 1 लाख रुपया मिलेगा इसलिए करते हो? नहीं, भगवान की खुदाई, भगवान की सेवा करने आए हो, उससे एक का पदम गुना जमा होगा, भाग्य बनाने के लिए आए हो। तो कर्म करते करते आज मुझे बाबा ने क्या सुनाया, ये कैसे करो? बाबा से, बाबा आपकी सेवा है, आपके लिए कर रहा हूं, बाबा ये कैसे करो? बाबा ने कल क्या कहा था? बाबा ये जो खाना बना रहे हम, इससे आपको भोग लगने वाला है, सर्वशक्तिमान शिव बाबा को कितनी सफाई होना चाहिए, अनाज साफ करते हो एक भी पत्थर जाना नहीं चाहिए, सब्जी साफ करते हो एक भी घास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को भोग लगने वाला है। कौन है वो? पवित्रता का सागर है। तो इसलिए आपको बता दूं एक बात, इधर याद रखना एक बार, कि भोग लगा रहे मधुबन में भी कभी भोग बनता है तो सब दरवाजे बंद करते, किसी की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। पहले भी मम्मा भोग लगा बनाती थी, क्योंकि खाना भोग बनता है किचन में, जाके देखते पहले मुंह में पानी आता है, आज जलेबी बन रही है, पहले भोग आप लगाते हो। तो खाना बनाते समय भी, भोग लगाते समय भी, तो देख लो अगर सफाई नहीं है। देखो एक दफा बहन जी को लगा आज गुरुवार है, सिर पर स्नान किया करके भोग बनाया, भोग बना के डब्बी में रख करके बहन जी, दूसरी बहन जी भोग लगाने वतन में गई, तो बाबा ने देखा बच्चे डब्बी में सांप लेके आए हो आप। बाबा डब्बी में सांप कैसे है? तुरंत एक सेकंड के अंदर नीचे आ गई। तो बाबा ने डब्बी में सांप दिखाया तो सांप कैसे आएगा? जिसने भोग रखा उसको पूछा कि बाबा ने तो कहा दिखाया, बाबा थोड़ी गलत बताएगा। तो डब्बी खोला, देखा कहां सांप है, देखा पनीर की सब्जी थी, उसके अंदर बाल का टुकड़ा था। तो सर्वशक्तिवान भगवान को भोग लगा रहे हो तो इतनी यहां खाना कौन क्या खत बनाते हो? ब्रह्मा भोजन। मन में गलत विचार आ रहा है, जैसा मन विचार उसका प्रभाव पड़ता है। हाथ की सफाई, अनाज सब्जी काटते हो, हर चीज, दुनिया में भी लोग सेवा करते हैं, यहां भी खाना बनाते हो तो यहां भी सेवा करते हो। ये सेवा पद्मों की कमाई जमा करने वाली है। दुनिया में लोग काम करते हैं वो एक का एक गुना मिलेगा। तो ये समझ चाहिए, हम किसकी सेवा करने आए, कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा हूं मैं, ये समझकर अगर सेवा करते हो तो आपका भी भाग्य और औरों को जिसकी भी सेवा करते हो वो भी संतुष्ट होता है। देखो इंदौर का ग्रुप आया, कोई आवाज नहीं है, एक भी आवाज नहीं है। 5000 10000 बाबा के बच्चे हैं लेकिन एक का भी आवाज नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसे कर्म करो तो वो यादगार बन जाए। दुनिया में भी लोग काम करते हैं वो यादगार में गायन भी नहीं बनता है। तो आप कैसी सेवा करेंगे? तो यादगार बनना चाहिए। तब बाबा ने कहा, अभी जब बाबा आए, बाप के दिल में बच्चे हैं और बच्चों के दिल में, तो आप पूछो आपके दिल में बाबा है? पहले पूछो बाबा है आपके पास दिल में? बाबा तो ऊपर बैठेगा, आपके दिल में कैसे रहेगा? भाई जी दिखाता है अपने दिल में है, यहां तो खून चलता है। आज की दुनिया में ये निकाल के दूसरा भी हार्ट लगा देते हैं, तो कौन से दिल में है? बुद्धि में। आत्मा का दिल बुद्धि, तो उस दिल में मुरली की एक पॉइंट याद रहना चाहिए, आज मुझे बाबा ने ये कहा था। ये अगर आपको याद है आपके दिल में दिलाराम है। नहीं तो योग में बैठे हो, कर्म करते हो, दिल में कौन है? अगर माताजी रोटी बनाती है, सब्जी काटती है, सब कुछ कर्म करते हो, करते करते क्या याद आ रहा है? अरे बच्चों ने खाना खाया कि नहीं, बच्चे स्कूल से आया कि नहीं, बच्चों को ये बना के रखा था, वो रखा था, बिजनेस करने वाला भाई बैठा है, हाँ तो उसको याद आता, उसको ये करना था, उसको फोन करना था। तो आपके दिल में कौन है? सेवा कर रहे हो, यहां हाथ से कर्म कर रहे हो, लेकिन आपके दिल में बुद्धि में किसकी स्मृति है? सोचो, हर कर्म करते समय, खाना बना रहे हो, जो भी कर्म, जो बाबा ने आके अभी पढ़ाया कि बच्चे बाप के दिल में कौन है? बच्चे हैं। पहले पूछो मेरे दिल में बाबा है? बाबा परमधाम छोड़ के आपके अंदर बैठेगा? नहीं, बाबा ने जो श्रीमद दिया है सिर माथे पर वो याद है, स्मृति में है। हां बाबा ने ये कहा था, मैं बाबा की सेवा कर रहा हूं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की सेवा कर रहा हूं, उसके श्रीमत के अनुसार सेवा कर रहा हूं। तो ये याद करते हुए तो उसको कहते हैं आपके दिल में दिलाराम है। अगर वो नहीं है, बुद्धि में और किसी की अगर स्मृति है तो दिल में कौन है पूछ लो। बाबा ने कहा फिर ऐसे बच्चे हैं जो श्रीमत के अनुसार, बाबा के एक एक श्रीमत के अनुसार सेवा करते हैं, चुपचाप भगवान को, सर्वशक्तिवान को साथ रखते हुए। साथ रखने का तरीका बताया, एक मुझे बाबा ने एक कहा था, बाबा से बात करते रहो तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा के स्मृति में सेवा करते हो तो ऐसे अनन्य बच्चे तो भगवान के दिल में है, भगवान भी उसको याद करता है। बच्चे देखो मेरे श्रीमत के अनुसार, जैसे लौकिक में घर में भी देख लो, कोई बच्चा मां बाप जो कहता है वो करता है, कभी ना नहीं करता, कभी किसी प्रकार का दुख नहीं देता है, तो मां बाप को कौन याद रहेगा? किसी से बात करेंगे पहले उनका ही नाम आएगा, और जो दुख देता है सुनता ही नहीं है तो उनकी याद आएंगी? तो पूछ लो आप, जैसे लौकिक ऐसे पारलौकिक में भी बाबा को भी किस बच्चों की स्मृति, बाप के दिल में कौन है? ये बाबा ने पूछा, आप पूछो, मेरा नाम मैं बाबा के दिल में होगा? मेरे दिल में बाबा अगर है तो बाबा के दिल में मैं भी हूं। तो पूछ लो 24 घंटे में मेरे दिल में, मेरे बुद्धि में किसकी स्मृति आती है? योग में बैठते ही एक बाबा, दूसरा ना कोई। सारा दिन में कर्म करते हो, कर्म करते हुए भी बार बार वही ज्ञान का चिंतन। कोई नहीं है, कोई सामने मिला उससे भी बात करो, उसको भी आज बाबा ने ये कहा था, मुख से भी वही शब्द है ना। तो ये अगर करते हो तो उसको कहेंगे आपके दिल में बाबा है। उसके साथ और एक है, तीसरा, निरंतर बाबा कहता है। जैसे आपने भक्ति में देखा, चलते फिरते हुए भी भक्ति में राम 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 करते जाते, इधर उधर देखते भी जाएंगे। आप भी सारा दिन सेवा करते रहो, किसी से मिलो देखो भी, लेकिन कोई भी सामने आया खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 याद है, और इसके अंदर 108 प्रकार की प्राप्तियां हैं, और सबसे सहज है। बाबा ने कहा बच्चे गृहस्थ में रहो, देखो 2004 के अवैक मुरली में देखो, बाबा ने कहा बच्चे गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, आप 108 की माला में आ सकते हो, कुछ नहीं करना है। आपके आंखों के सामने कोई भी आया खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। तो क्या देंगे आप? कुछ भी नहीं है, दोनों हाथ खाली, दोनों जेब भी खाली। किसी पर नजर गई, चाहे मित्र हो चाहे दुश्मन हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसको जानते हो जिसको नहीं जानते हो, कोई भी सामने आया, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो, शुभ बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो, शुभ बाबा इसको शांति की शक्ति दे दो। किसी को देखते ही मन में दुआएं निकले, शुभ श्रेष्ठ संकल्प निकले। आज स्लोगन में बाबा ने सुनाया है ना, किसी को देखते ही क्या आना चाहिए, हमारे हर संकल्प में क्या होना चाहिए। तो एक एक को देखते ही ये निरंतर सारा दिन में हमारे सामने कोई ना कोई है, कोई मित्र है, कोई दुश्मन है, कोई स्नेह सहयोगी है, कोई दुख देने वाला है, कोई गलत शब्द बोलता है, हाँ है, तभी तो इसको कलयुग कहा। तो इसके लिए ज्ञान दिया, इसलिए अस्त्र दिया, कोई पत्थर मारता है, सब कुछ होगा। तो आपको अपने को बचाना है तो हमको क्या करना है? ऐसे व्यक्ति को भी बाबा ये आपका बच्चा है, इसका आप ध्यान दे दो, इसका आप कल्याण करो। ये चौथा तरीका बताया, सारा दिन में सवेरे उठे निरंतर कैसे करें, अलग अलग तरीका। सवेरे योग किया, मुरली के पॉइंट, चलते फिरते देखते औरों को देखो, देखते ही औरों के संबंध संपर्क में आना है। जंगल में नहीं बैठे हम, सन्यासी नहीं, गृहस्थ में रहो। बच्चे बहुत परेशान करते हैं, माताजी कहती सुनते नहीं है, लेकिन वो आपका बच्चा नहीं है, वो शुभ बाबा का बच्चा है। मन ही मन में संकल्प कर, बाबा ये आपका बच्चा नहीं, आपका बच्चा है, पढ़ता नहीं है, आप इसको समझाओ। पहले संकल्प से समझाओ फिर मुख से बोलो। हम पहले मुख से बोलना चाहते हैं तो संकल्प काम नहीं करता है। तो औरों को बताने की, पढ़ाने की भी विधि चाहिए कि संकल्प तीव्र गति से काम करता है। तब बाबा ने कहा अपने संकल्प से काम ले लो अभी, क्योंकि कोई भी किसी का शब्द सुनना नहीं चाहता है, किसी को आप शिक्षा दे दो नहीं चाहते हैं। मन से अगर संसार में गृहस्थ में शांति चाहते हो तो मन से बात किया करो, संकल्प, और बाबा को बताओ कि बाबा ये आपका बच्चा है, मेरा पति नहीं। कभी बाबा ने दो दिन पहले कहा था कि बाबा मेरे पति का बुद्धि का ताला खोलो, बच्चे ये मेरा ये काम नहीं, इसको टचिंग दे दो। नहीं बच्चे ये मेरा काम नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया, मेरे सारे बच्चे, विधि बताता है, आप दे दो। आप मेरा पति कहते हो तो आप करो, मेरे बच्चे कहते हो आप करो, बाबा आपका बच्चा है। तो ये संकल्प अगर सारा दिन में कर्म करते करते ये कर सकते हो, सारा दिन कर्म करो, रात शाम को फिर सारा दिन कर्म हो गया, शाम को बैठते हो आराम से फ्रेश होके आओ, शाम को भी सारा दिन बैटरी यूज किया, शाम को फिर चार्ज करना चाहिए। तो रोज आधा घंटा निकाल के रखना चाहिए, निमा शाम 6:30 से 7:30-8 बजे तक, आधा घंटा कितना भी समय हो। जैसे नींद शरीर को चाहिए, तो आत्मा को भी स्वस्थ रखने के लिए, अपनी बैटरी सारे क्लब के अंदर चार्ज करने के लिए, सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा पहले से निश्चित करना है। उस समय कोई भी काम नहीं है। कोई आपको 1 करोड़ रुपीज देता है, भाई जी 1 करोड़ रुपीज देता है, योग नहीं करो शाम को, चलेगा? ये 1 करोड़ खाया पिया यहां ही खत्म। और शाम को आधा घंटा जो योग किया वो कितने जन्मों के लिए देगा गारंटी बाबा के? किस जन्मों के? सारे कल्प के लिए चार्ज करता है बैटरी। ये अविनाशी कमाई और विनाशी कमाई, दोनों का अंतर अच्छी तरह से जानना चाहिए। तब बाबा ने कहा, गीता में भी कहा, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है। भावना वाला नहीं, भावना वाला सेवा करना चाहिए, इतना ही पता है उनको दुनिया में भी, लेकिन समझ से सेवा करो, समझ से अपनी भी सेवा करो, समय पर सेवा करो, कि जो हम अभी कर रहे हैं ये सारे कल्प का आधार है, फाउंडेशन है ये। सारे कल्प में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहते हैं तो ये समय पर बीज विधि पूर्वक बोलना चाहिए। अगर विधि पूर्वक अभी बीज नहीं बोया तो सारे कल्प में कहां से लेके आएंगे? ऊपर से गेहूं आएगा? ऊपर से धन आएगा? नहीं। तब बाबा ने कहा, ये तन को अगर निरोगी काया चाहिए तो बाबा ऊपर से दवाई नहीं देता है। बच्चे इस रुद्र यज्ञ की सेवा करो, ये यज्ञ आपको वरदान देगा, निरोगी काया वरदान देगा। धन न लेके आए थे न ले जाएंगे आप, तो धन इस अच्छे कार्य में लगाओ जो अविनाशी प्राप्ति देता है। शरीर को खाना खिलाओ, कपड़े दे दो, तो शरीर को दिया आपने एक का एक गुना, और आत्मा के कर्म आत्मा के लिए दिया। आत्मा के लिए सेंटर बनाया, सेंटर में देखो कौन बैठेंगे उधर? ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं, आत्मा को पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है। आपका धन अविनाशी कमाई जमा कर रहा है। किसी को गरीब को आपने खाना दिया, हो गया फिनिश, कल फिर चाहिए। ये पढ़ाई अविनाशी कमाई देता है, तो इसलिए धन कहां लगाना चाहिए? अविनाशी कमाई में लगाओ। मन कहां लगाना चाहिए? मन के अंदर अविनाशी शक्ति जमा होनी चाहिए, सदा के लिए हमारा मन प्रसन्न रहना चाहिए। तो ज्ञान, ज्ञान का चिंतन, औरों को भी मुरली के पॉइंट सुनाते हो आप, ये अविनाशी ज्ञान रतन है, विनाश होने वाला नहीं। इसका फल अनेक जन्मों के लिए मिलता है। तो तन कहां लगाना चाहिए? तब कहेंगे कोई एक व्यक्ति सारे कल्प में सदा सुखी है, कोई एक व्यक्ति देखो 10 जन्म के लिए ठीक है, जन्मते ही बीमार है, क्यों? काला है, गोरा है, लंगड़ा है, कौन कर रहा है? हमने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं। तो कैसे पता चलता है? तब कहते मुखड़ा देख ले प्राणी, जब रात को सोते हो आंखें बंद करके देखो स्वप्न बताते हैं। अगर 5 विकारों के स्वप्न आते, कहां से आते हो? इधर उधर है चारों तरफ नहीं, अंदर भरे हुए है। हमने किए हुए कर्म, मैं कौन सी आत्मा हूं? अपना मुखड़ा देख लो, डॉक्टर भी देखो दवाई देने से पहले एक्सरे दिखाता है फिर दवाई देता है। आपके अंदर कौन सी बीमारी दिखाता है पहले? यहां भी अपना मुखड़ा देख लो, मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है। तो ऐसे लेकर के परमधाम जा सकते हो। फिर देखो मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, कहां से आते हो? इधर शांतिवन में विचार मिलते हैं ऐसे नहीं, अंदर भरा रिकॉर्ड भरा हुआ है, वो विचार चलते हैं। तो इसलिए कहा अपने आप को देख लो, और ये समय है, भगवान ने हमें ऐसा स्थान दिया है। देखो एक साथ अगर एक व्यक्ति बैठ के योग करना और संगठित रूप में सभी मिलकर के योग करते हो, देखना ताकत कितनी है। एक मोमबत्ती जलाओ और 1000 मोमबत्ती एक साथ जलाओ, कितनी रोशनी होंगी? तब बाबा ने कहा संगठित रूप में एक जैसा हो, नहीं तो कोई घर को याद कर रहा है, कोई परमधाम को याद कर रहा है, कोई सूक्ष्मतन को कर रहा है, कोई मुरली के पॉइंट चिंतन करता है, नहीं, सबके एक जैसे विचार हो, हर एक के जितने बाबा के बच्चे बैठे एक ही बाप है, एक ही विधि है, बाबा ने एक ही विधि बताया, बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो। तो जब भी मैं बैठते हो हर एक के मन में पूछता क्या विचारते थे अमृत वेले शाम को, इसलिए याद, योग और तपस्या ये तीन चीज है। तो विधि पूर्वक अगर बैठते हो मन इधर उधर नहीं जाता, इधर उधर के विचार नहीं आते, पुरानी बातें आते नहीं है, ना माया आती है, ना रावण आता है, ना विघ्न आता है, क्यों? हम विधि पूर्वक अगर नहीं कर बैठते हैं तो जरूर एक कलयुग है, वातावरण ऐसा है, बाजू वाला भाई सोता है उसके वाइब्रेशन, मन खाली है, अगर आपका मोबाइल बंद है, हाय दूसरा कोई फोन करता है तो रिंग बजेगा ना, अगर आप किसी से बात करते हो कितना भी कोई बात करता फोन करता है आएगा रिंग, तब का आपका मन और बुद्धि एंगेज रखो, कम से कम सारा दिन में आधा घंटा जब बैठते हो दूसरे इधर उधर के रिंग आवाज आना नहीं चाहिए, तो आप उसको एंगेज रखो। अगर मन बुद्धि मन रिसीव करता है, कितना भी आवाज हो, कितना भी कोई फोन करता है कहता मैंने 10 फोन किया 50 फोन किया आपने उठाया नहीं, नहीं हमारा मन एंगेज था, मैं बाबा से बात कर रहा था, सभी को बता के रख दो 7 से 8 6:30 से 7:30 हमने भगवान से हमारा अपॉइंटमेंट है और किसी से नहीं है। तो उस समय बैठ करके ये सारे कल्प का आधार है, तब का पुरुषोत्तम बनने का आधार है, ये अपने आप नहीं बनेंगे, सिर्फ सुना आपने नहीं, सिर्फ पढ़ा नहीं, करना चाहिए, करेंगे तो बनेगा संस्कार। तो तब कहते संस्कार ले जाएंगे आप, ज्ञान ऐसे नहीं जाएगा, सुना हुआ नहीं, अंदर अगर संस्कार भरा हुआ है तो संस्कार से संसार बनता है। अगर भविष्य में ऐसे संसार चाहिए, ऐसा जीवन चाहिए, तो ज्ञान से नहीं मिलेगा, संस्कार से मिलता है। तो पूछ लो मेरे आज संस्कार कौन से है, सत्युग के लायक है कि त्रेता के ही लायक है कि द्वापर के लायक है, पूछ लो। हम चाहते हैं, बाबा ने कहा बच्चे अचानक परिवर्तन होगा, अभी भी बाबा ने कहा बच्चे स्वर्ग आया, आपका दुनिया आई कि आई नई दुनिया आई कि आई, आएंगे लेकिन मैं कहां होगा, मैं क्या बनूंगा वहां, तो वो चुकना, परीक्षा आएंगी जरूर लेकिन परीक्षा में मेरा रिजल्ट क्या होगा, मैंने कितनी पढ़ाई किया है। फिर भी बाबा ने कहा अगर ऐसा स्थान दिया है, देखो इस डायमंड हॉल में आराम से बैठ सकते हो, जमीन पर भी नहीं, कुर्सी है, आराम से बैठो, कोई आवाज नहीं, इधर उधर का कोई डिस्टर्बेंस है, सेंटर में किसी का आवाज आता है और किसका चलता है तो कोई नहीं है, और इतना सुंदर वातावरण है। हर साल देखो कितने बाबा के बच्चे आकर के तपस्या करते हैं, ऐसे तपस्वी भूमि है ये, तो इसका पूरा उपयोग लेना न लेना हमारे हाथ में है। तो भगवान बच्चों को चातक कहते हैं, भगवान मां बाप है, पालना करता है, सिर्फ ज्ञान सुना के जाता नहीं, हमारे लिए स्थान दिया, ऐसी व्यवस्था, किसी को कोई मेहनत नहीं, बना भगवान समय पर खाना तैयार, आप दूसरी किधर भी जाओ वहां टिकट लेना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, समय पर चीज मिलेंगी, यहां कभी भी जाओ चाय भी तैयार है आपके लिए, दूध चाहिए तो दूध तैयार है, किसको कॉफी चाहिए, जिसको जो चाहिए। तब दुनिया वाले कहते हैं यहां आके लगता है कि हम भगवान के घर में पहुंचे हैं, कि भगवान के घर में सब कुछ खुला है, बेहद है, कोई कंट्रोल नहीं है, कभी भी जाओ। तो इसलिए कहा इसका उपयोग पूरा लेना चाहिए, तो निरंतर याद कर सकते हो सवेरे से, फिर रात को सोते समय, शाम को योग किया, फिर खाना खाने के बाद रात को सोते समय कभी भी बुरे स्वप्न नहीं आना चाहिए। तो आपके हाथ में नहीं, स्वप्न आपको पूछ के नहीं आता है, पूछ के आता है नहीं, उसकी विधि है। एक मुरली सदा अपना तकिया के नीचे रख दो और सोते समय पढ़ते पढ़ते कहते हैं अच्छे विचार करते हुए सो जाओ, तो विचार अच्छे कैसे करें, मन हमारा कंट्रोल में तो नहीं, तो क्या करें? तो मुरली जो आपने लिखी हुई हो या प्रिंटेड, पढ़ते पढ़ते सो जाना। अगर पढ़ने से पहले अगर एक ही कमरे में 5-6 सोते हो, बाहर जहां लाइट है बैठो, 5 मिनट 10 मिनट अच्छी तरह से मुरली पढ़ो और जाके सो जाओ। अगर अकेले हो तो उधर सोते हुए पढ़ते पढ़ते सो जाना। अच्छे विचार करते पढ़ते पढ़ते सोते हो तो पुराने संस्कार जागृत नहीं होते हैं। अगर देश समझ के टीवी देखते किसी से बात करते करते सो जाते हो, अंत मति सो गति, अंत में सोते सोने जाते हो, तो क्या किस स्मृति में गए? वो स्मृतियां, उस स्मृति में रहकर आपने जो जो कर्म किया, आप कहेंगे पुराने पुराने स्वप्न आते हैं। क्यों? सोते समय किस स्मृति में सोते हैं? हम शरीर की स्मृति में सोते हैं, शरीरधारी समझ करके, तो वो बातें याद आती है। तो इसलिए कम से कम 5-10 मिनट पढ़ो, मुरली पढ़ो। एक मुरली सभी बाबा के बच्चे हैं इधर, तो मुरली अपने पास रखो। एक पॉइंट सारा दिन के लिए, सोते समय 5-10 मिनट अच्छे विचार करते करते, चलते चलते सो जाते हो, देखना कब सोए कब उठे पता ही नहीं चलेगा। आज करके देखना, कल सवेरे उठते ही देखना, अमृत वेले योग के में बैठेंगे, कोई इधर उधर के विचार आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मन स्वच्छ है, गहरी नींद आ जाती है, सवेरे उठते मन बुद्धि स्वच्छ है, सीधा ऊपर जाता है। अगर रात को कोई बुरे स्वप्न आए, विधि पूर्वक सोए नहीं, योग में बैठेंगे, बैठते नींद आएंगी, मैला मन है, स्वच्छ नहीं है, वो ऊपर जाता नहीं है, बार बार वो याद आएंगे, ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये इसके कारण है, उसका चिंतन चलेगा। तो ये ज्ञान सुना हुआ है वो याद नहीं आएगा कि बुद्धि के अंदर दूसरा कोई बैठ गया, तो ये नहीं बैठेगा। अगर सोते समय सोए मन बुद्धि खाली है, जो बैठते ही मन और बुद्धि दोनों फैन चलते हैं, आराम से चलाना चाहिए, तन और मन दोनों शीतल है। ये एक विशेषता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, एक मन से योग करना, वो भक्ति बाबा ने आज भी सुनाया, मन मना भव, ये भक्ति का है। यहां नहीं, मन और बुद्धि, बाबा ने कहा बुद्धि योग है। अगर बुद्धि स्वच्छ है तो जो मुरली सुनी वो याद रहता है। किसी भी कारण मन में गलत विचार आता है, मन चंचल है, अगर किसी को देखते गलत विचार आएगा कौन समझाएगा? माताजी अपने बच्चों को समझाती है, बच्चे ऐसा नहीं करना चाहिए, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है। अगर मेरे मन में गलत विचार आता है तो मुझे कौन समझाएगा? हां बुद्धि। सवेरे बाबा ने ज्ञान सुनाया है लेकिन बुद्धि को याद है, तो बुद्धि अपने आप को पढ़ाती है, नहीं उन्होंने ऐसा किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उनका कर्म है, उनका पार्ट है, मेरा पार्ट कैसा बजाना है वो मुझे बजाना है, मुझे बाबा ने कहा बच्चे तुम ऐसे सोचो। अगर ज्ञान सुना हुआ है, ज्ञान मन के ऊपर प्रयोग करो। ज्ञान किसके लिए है? मन चंचल है तो मन को अपने आप को पढ़ाने के ज्ञान का प्रयोग चाहिए। और योग की शक्ति जो है संस्कार को मिटाने के लिए, तब का योग अग्नि से पुराने जो दाग है, संस्कार है, आदत है, उसको आप मिटा सकते हो। तब बाबा ने बहुत अच्छी एक बात बताई, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परिवर्तन और शूटिंग दोनों साथ साथ होता है। शूटिंग भी हो रहा है, अभी जो कर रहे हो 5000 साल के लिए फिक्स होगा, और 5000 साल पहले जो किया है, तो ज्ञान और योग के प्रयोग से आप उसको परिवर्तन कर सकते हो अपने आप में। ये दोनों साथ साथ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ये परिवर्तन है कि परिवर्तन भी कर सकते हो और शूटिंग भी हो रहा है। ये दोनों बात को याद करते समय, हां उन्होंने ऐसा किया, हां वो करेंगे, मुझे क्या करना है, मेरा धर्म क्या कहता है, मुझे बाबा ने क्या पढ़ाया। तो वो अगर जिसके बुद्धि में आज मुरली सुनी वो अगर याद है तो अपने आप को पढ़ाता है, परिवर्तन करता है, वो जोर से बोलता है, वो गलत बोलता है, वो दुख गलत शब्द कर देता है, गलत कर्म करता है, लेकिन मुझे क्या करना है वो मेरे हाथ में है। मेरे पास ऐसा कोई पावर नहीं मैं उसको परिवर्तन करूं। ऐसा पावर है किसी के पास? नहीं। स्वयं को परिवर्तन करो का। तो इसके लिए ज्ञान क्यों चाहिए? तब कहा ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। ज्ञान यूज करेंगे तो सिर्फ सुनने से नहीं। सुन लिया सवेरे मुरली सुनी और दो मिनट के बाद बाहर जाते ही किसी को गुस्सा किया, क्या फायदा? किसी को देखते गलत विचार आया, क्या फायदा? तो पढ़ के क्या किया? तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में योग का महत्व इसके लिए है, ज्ञान का महत्व इसके लिए है। तो ये सवेरे से रात तक अगर इस विधि पूर्वक सिंपल, कोई नहीं एक एक घंटा दो दो घंटा बैठो और नींद करो, नहीं, बाबा ने मेहनत नहीं सिखाया। बच्चे विधि पूर्वक सवेरे दो घंटा भी बैठना नहीं, बहुत खाना खा लो मोटा बन जाएंगे, नहीं। हर एक मनुष्य की एबिलिटी है, ताकत है, अपने ताकत पेट के अनुसार खा लो। तो हमारी आज कलयुग की दुनिया में आधा घंटा पावन घंटा आराम से विधि पूर्वक बैठ सकते हो। तो सवेरे आधा पावन घंटा बैठो, फिर मुरली सुनो। मुरली का एक पॉइंट, बहुत पॉइंट याद रखना चाहिए, इतनी बुद्धि स्वच्छ नहीं है, तमो प्रधान है, बहुत पाप भरा हुआ है। तो एक छोटा सा जगह खाली है, एक मुरली के पॉइंट आ सकता है। तो एक एक रे लो बस, 30 दिन में देखो 30 मुरली के पॉइंट हमारे जीवन में उतरते हैं। तब कहा बूंद बूंद मिलकर के, एकदम नहीं, एकदम परिवर्तन नहीं होगा। सारा दिन में किसी से देख लो, कोई कैसा भी हो, आंखें बंद नहीं करना, मुंह मोड़ना नहीं। इसको शास्त्र गीता में भी कहा अधम से अधम महापापी है, बहुत खराब है, और एक पत्थर मारना चाहिए? नहीं, उसका भी कल्याण करना चाहिए। तब बाबा ने कहा बच्चे आप नहीं कर सकते हो, आपके पास कोई नहीं। बाबा ये भी आपका बच्चा है, इसको ऐसी सद्बुद्धि दे दो, ऐसे कर्म और न करे, क्योंकि आपका बच्चा है। अगर देखो कोई बच्चा आवाज करते हैं, माताजी को कहेंगे ना, माताजी आप अपने बच्चों को संभालो, देख लो। मां ने कहा बच्चे चुप बैठेंगे, आपने कहा तो नहीं मानेंगे। तो भगवान के बच्चे हैं, कोई भी सभी एक जैसे नहीं, ये होगा। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए वो जानना चाहिए। समझ में आया? सवेरे से रात तक निरंतर बाबा को याद करो। कहते दुनिया में भी कैसे करें, आप कहेंगे सवेरे किया शाम को किया, इसका मतलब सारा दिन बैठे रहो जरूरत नहीं है। हर कर्म करते हुए कैसे बाबा को साथ रखना है, कैसे स्वयं को भी और औरों को भी, दूसरों के साथ सेवा करते हुए भी बार बार मुख से आज के मुरली के पॉइंट निकलने चाहिए। देखो आज बाबा ने कहा, हां कोई व्यक्ति आएगा आपको इधर उधर की बात सुनाने के लिए आएगा भी, वो भी होगा। आप कहेंगे हम नहीं सुनना चाहते, वो इधर उधर की बात सुनाता है ना, उस भी सुनाएगा। तो अगर पता एक बार फंस जाते, ये भाई आता है क्या सुनाता है, ये माताजी बोलती है क्या बोलती है, अपना दुख परिवार का दुख वही सुनाती है। हां एक दफा पता चल गया, दोबारा माता आती, माताजी आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, आप हो करके शुभ विचार दे दो। तो उनके मन में भी आएगा, हां आज मैंने भी मुरली सुनी थी, बाबा ने ये कहा था, वो सुनाने कुछ आए थे और सुनाने लगे दूसरा कुछ। तो ये औरों के भी वृत्ति को परिवर्तन करने की आदत चाहिए। पता है किसी की आदत है, वृत्ति है इधर उधर के समाचार सुनाने का, हां उनकी आदत हम चेंज नहीं करते। कैसे करें? तो आपने को भी बचाओ और कोशिश करो उसके अंदर भी अच्छी चीज डालने के लिए। तो इस प्रकार की ये पढ़ाई है। तो ये पढ़ाई बनाते पढ़ेंगे विधि पूर्वक तो बनेंगे नवाब। समझ में आया? अभी सारा दिन कर सकते हो कि थोड़े दिन समय कर सकते हो? संसार में रहो, कोई भी काम करो। बाबा ने कहा कर्म छोड़ो नहीं, कहा कर्म सन्यासी नहीं, कर्म योगी। कर्म करते हुए भी अगर मुरली के पॉइंट है, जब भी समय मिला निकालो पढ़ो, अपने को पढ़ाओ, जितने दफा पढ़ाओ 10 दफा पढ़ाओ। गुलजार दादी कहती है जब भी पानी पीते हो तो याद करो। समझ में आया? विधि पर अभी दादी जी आएंगी। सात से साढ़े सात बजे तक योग करेंगे, तब आप भी बैठ के एकांत, कोई बीच में इधर उधर नहीं जाना, आराम से बैठ के बाबा को याद करना। ओम शांति।